ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 21 खरब 24 अरब 34 करोड़ का बजट किया संसद में पेश। चालू खर्च के लिए 12 खरब 70 अरब और पूंजी निवेश खर्च के लिए 4 खरब 31 अरब का बजट है आवंटित। आर्थिक वृद्धि दर 7% पहुंचाने का है बजट का लक्ष्य। कर्मचारियों के वेतन में करीब 21% की हुई बढ़ोतरी। व्यक्तिगत आयकर की सीमा हुई 10 लाख रूपये। 19वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित और भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 21 खरब 24 अरब 34 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। संघीय संसद की संयुक्त बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने बजट पेश करते हुए बताया कि कुल बजट में से 12 खरब 70 अरब 58 करोड़ रुपए चालू खर्च, 4 खरब 31 अरब 10 करोड़ रुपए पूंजी निवेश खर्च और 4 खरब 22 अरब 64 करोड़ रुपए वित्तीय प्रबंधन के लिए विनियोजित किए गए हैं। बजट में सरकार ने विश्वास जताया है कि इसके क्रियान्वयन से आर्थिक वृद्धि दर 7% होगी और मूल्य वृद्धि 6% पर सीमित रहेगा। बजट में पूर्व पश्चिम राजमार्ग, तराई मधेश द्रुत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग और पुष्पलाल मध्य पहाड़ी राजमार्ग सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए अरबों रुपए विनियोजित किया गया है। सड़क तथा शहरी पूर्वाधार विकास के लिए कुल 286 अरब 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल, ढल निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लाइन, सिंचाई परियोजनाओं तथा कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किया गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 218 अरब 30 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 101 अरब 95 करोड़ और स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लिए 15 अरब रुपए विनियोजित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए 120 अरब, कृषि तथा पशुपंछी विकास के लिए 46 अरब 92 करोड़ तथा वन, वातावरण एवं जलवायु क्षेत्र के लिए 12 अरब 31 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसी तरह पर्यटन, नागरिक उड्डयन, उद्योग, श्रम, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र के लिए भी अलग अलग बजट व्यवस्था की गई है। बजट में औद्योगिक पूर्वाधार विकास, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन तथा नेपाली सेना के आवास स्तरोन्नति कार्यक्रम को भी प्राथमिकता दी गई है। अर्थमंत्री डॉ वागले ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है तथा व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम दर में 10% अंक की कमी की गई है। इसके साथ ही 273 प्रकार के कच्चे पदार्थों पर भंसार दर घटाई गई है। मौजूदा 11 स्तर के भंसार दर को घटाकर 7 स्तर में सीमित किया गया है। साथ ही 360 वस्तुओं पर लगने वाला अंतः शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि राष्ट्र सेवक कर्मचारियों को मिल रही महंगाई भत्ता व्यवस्था को निरंतरता देते हुए प्रारंभिक वेतनमान में 10% वेतन वृद्धि की गई है। इसके साथ ही कार्य संपादन आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू करने के लिए नए वेतनमान के मासिक 10% के बराबर प्रोत्साहन भत्ता देने की व्यवस्था भी की गई है। अर्थमंत्री वागले के अनुसार इस व्यवस्था के बाद राष्ट्र सेवक कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में लगभग 21% की शुद्ध वृद्धि होगी तथा ग्रेड सहित न्यूनतम पारिश्रमिक 40,000 रूपये से लेकर 1,00,000 रूपये से अधिक तक पहुंचेगा। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि सार्वजनिक संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ संस्थानों में पूंजी वृद्धि और अन्य में सरकारी शेयर विनिवेश की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि गोरखकाली रबर उद्योग सहित 7 उद्योगों की संपत्ति और दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर उन्हें निजी सार्वजनिक साझेदारी मॉडल में संचालन किया जाएगा। अर्थमंत्री वागले ने कहा कि नेपाल टेलीकॉम में संघीय सरकार की 66% हिस्सेदारी बरकरार रखते हुए शेष शेयर सर्वसाधारण के लिए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेपाल की ऊर्जा क्षमता का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के विकास, दक्ष जनशक्ति निर्माण, डिजिटल निर्यात और आर्थिक रूपांतरण के आधार तैयार करने में किया जाएगा। उन्होंने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को उत्पादन, प्रसारण, वितरण और व्यापार के लिए 3 अलग अलग कंपनियों में रूपांतरित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जिन विद्युत परियोजनाओं का विद्युत खरीद समझौता पीपीए हो चुका है लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ है उनकी अनुमति रद्द कर टेक और पे आधार पर नए समझौते किए जाएंगे। इसके अलावा 10 मेगावाट से कम क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं का तत्काल पीपीए किया जाएगा तथा निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की अनुमति दी जाएगी। अर्थमंत्री वागले ने कृषि क्षेत्र के पुनरुत्थान को उच्च प्राथमिकता देने की बात कहते हुए बताया कि कृषि को सम्मानजनक और लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए न्यूनतम 2 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाले किसानों को 40% तक अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने ये भी कहा कि निर्माणाधीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को इसी आर्थिक वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जायेगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सरकार ने काठमाण्डु तराई मधेश द्रुत मार्ग के लिए 17 अरब 64 करोड़ रूपये का बजट विनियोजित किया है। संघीय संसद की संयुक्त बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट प्रस्तुत करते हुए अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने बताया कि अगले वर्ष 40 पुल और 5.4 किलोमीटर सुरंग निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बजट वक्तव्य में यह भी उल्लेख है कि आगामी आर्थिक वर्ष में द्रुत मार्ग के लिंक रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा है कि गणतंत्र की मर्यादा और मजबूती के लिए सभी राजनीतिक दल, सरकार और नेतृत्व को राजनीतिक निष्ठा, मूल्यों और आचरण में सुधार के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। 19वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर टोडीखेल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोडेल ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व को जन उत्तरदायी, विनम्र और चरित्रवान होना आवश्यक है तथा उपलब्धियों को मजबूत करते हुए सामाजिक न्याय सहित आर्थिक और सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र ने नागरिकों को पूर्ण राजनीतिक अधिकार दिए हैं और ये राष्ट्र निर्माण की बड़ी प्रेरणा है। सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान और भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे नागरिकों में आशा बढ़ी है। राष्ट्रपति पोडेल ने कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग और सेवा क्षेत्र को मजबूत बनाकर आर्थिक विकास को गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया। समारोह में उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राज्यसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायों के प्रमुख, कूटनीतिक प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति रही। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने सरकार पर भूमिहीन और सुकुम्बासी के व्यवस्थापन में असफल होने का आरोप लगाया है। ललितपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सुकुम्बासी समस्या का समाधान संविधान और कानून के अनुसार मानवीय तरीके से किया जाना चाहिए। सभापति थापा ने कहा कि रात में जिन झोपड़ियों में लोग सोए थे, सुबह उठते ही उन झोपड़ियों को अचानक हटाना अमानवीय है और सरकार को गरीबों के खिलाफ नहीं बल्कि गरीबी के खिलाफ काम करना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गुरुवार देर रात निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 3 मजदूरों को मलबे से जीवित निकालकर अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और अचानक ढांचा गिर गया, जिससे मजदूर मलबे में दब गए। मृतकों में 2 हमीरपुर और 4 बांदा जिले के निवासी बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार राहत और बचाव कार्य रात भर जारी रहा और जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर मजदूरों को निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह घटना खराब मौसम या निर्माण में लापरवाही के कारण हुई। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 21 खरब 24 अरब 34 करोड़ का बजट किया संसद में पेश। चालू खर्च के लिए 12 खरब 70 अरब और पूंजी निवेश खर्च के लिए 4 खरब 31 अरब का बजट है आवंटित। आर्थिक वृद्धि दर 7% पहुंचाने का है बजट का लक्ष्य। कर्मचारियों के वेतन में करीब 21% की हुई बढ़ोतरी। व्यक्तिगत आयकर की सीमा हुई 10 लाख रूपये। 19वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित और भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।